यशया अध्याय नौ, अध्याय नौ में वो कहता है पद एक, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबुलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यर्दन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। आक्रमण उत्तर की ओर से गलील क्षेत्र से हुआ था और जबलून और नप्ताली सेनाओं के द्वारा रौंदे गए थे। उनके आगमन पर आशा की जा रही थी कि इसराइल वासी पश्चाताप करेंगे और परमेश्वर की ओर फिरेंगे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो निकट भविष्य में घटने वाली घटनाओं को छोड़कर दूर भविष्य में घटने वाली भविष्यवाणी करता है, और वो भविष्यवाणी इस प्रकार है, यशया अध्याय 9 पद 2 से लेकर 5 तक। जो लोग या परमेश्वर से दूर अंधियारे में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया, वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके बहंगों के बास, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था, क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। अब आती है यीशु के जन्म और सेवा कार्य की भविष्यवाणी, यशाया अध्याय 9 पद 6 और 7। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा के धुन के द्वारा ये हो जाएगा। ये भविष्यवाणी की अद्भुत प्रेरणा है कि यशया वर्तमान स्थिति को पार करके दूर भविष्य में प्रवेश करता है। आराम और समरिया शमरोन की संयुक्त सेना पराजित होगी, अशूर राजा वहां आकर विनाश करेगा, परंतु वो उसे अपने अधीन नहीं करेगा। भविष्य की आशा मनुष्य में नहीं होगी, मनुष्य की आशा कुंवारी से उत्पन्न एक बालक में होगी। यीशु के जन्म को मानवीय दृष्टिकोण से देखा गया है। उसका जन्म दाऊद के नगर यहूदा के बेतलहेम में हुआ था, लूका दूसरा अध्याय 11 पद। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। एक बच्चे का जन्म, ईश्वरीय दृष्टिकोण से देखे तो एक पुत्र दिया गया। यहां पर दो बातें हैं, मानवीय दृष्टिकोण से एक पुत्र जन्मा, परंतु ईश्वरीय दृष्टिकोण से इसका अर्थ एक बालक के जन्म से बढ़कर है, क्योंकि एक पुत्र दिया गया। यूहन्ना तीसरा अध्याय 16 पद, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मानवीय दृष्टिकोण से बालक का जन्म होना, ईश्वरीय दृष्टिकोण से पुत्र दिया जाना, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। भविष्यवाणी का ये भाग अभी पूरा नहीं हुआ है, इसका पूरा होना बाकी है, क्योंकि उन लोगों ने यीशु मसीह को गलत समझा। यहां इसलिए हमें शिष्यों से सहानुभूति दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि वे लोग मसीह की प्रतीक्षा में थे, क्योंकि वे मसीह संबंधित भविष्यवाणियों के बारे में जानते थे। इसलिए जब भी यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बारे में बातें करते थे, वे असमंजस में पड़ जाते थे, क्योंकि वे मसीह की मृत्यु के बारे में बातें सुनना नहीं चाहते थे। वे मसीह को दाऊद के सिंहासन पर बैठा हुआ देखना चाहते थे। वे यीशु मसीह के राज्य और दुनिया पर राज करने के बारे में चर्चा करना चाहते थे। जब यीशु मसीह ने अपने क्रूस आरोहण के बारे में बात की, तब पत्रस ने यीशु मसीह को अलग ले जाकर झिड़कते हुए कहा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तुझ पर ऐसा कभी न होगा। अपने क्रूस आरोहण के बारे में उल्लेख करते समय पत्रस प्रभु यीशु मसीह को झिड़का करता था, और उसके बदले में शिष्यों को यीशु मसीह से डांट पड़ती थी। वे नहीं समझते थे, अतः वे पूछा करते थे, प्रभु, तू अपना राज्य कब स्थापित करेगा? यीशु ने कहा, मित्रों, इससे पहले बहुत काम करना बाकी है। अभी परमेश्वर के राज्य की स्थापना होगी, इस भविष्यवाणी की पूर्ति होना बाकी है। बालक का जन्म हुआ और एक पुत्र दिया गया। ये इस प्रकार हुआ जिसकी वे प्रतीक्षा में नहीं थे। उसका जीवन हमारे पापों के छुटकारे के लिए दिया गया। अभी हम उस दिन की प्रतीक्षा में हैं। प्रभुता उसके कंधों पर होगी। वो दिन बहुत जल्द आने वाला है, ये मेरा पूरा विश्वास है। जब यीशु आकर राज्य स्थापित करेगा, प्रभुता उसके कंधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। बालक जन्मा और पुत्र दिया गया। ये बातें यहोवा विटनेस के लिए चुभन जैसी बात है। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। मीखा की भविष्यवाणी पर ध्यान दीजिए। मीखा अध्याय 5:2, बेतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है, दाऊद के सिंहासन का उत्तराधिकारी, इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर के और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा का धुन के द्वारा ये हो जाएगा। बहुत ही सुंदर भविष्यवाणी जो यीशु के फिर से सामर्थ और असीम महिमा में आने की और पृथ्वी पर राज करने की भविष्यवाणी है। इस बार वो बालक रूप में तथा दास के रूप में मरने नहीं आ रहा है। वो हमेशा के लिए एक बार मर चुका है। अब वो राज करने के लिए अपना अनंत काल का राज्य स्थापित करने के लिए आ रहा है। परमेश्वर लोगों का न्याय करने जा रहा है। वो बहुत जल्द आ रहा है। यशया अध्याय 9:8-10। प्रभु ने याकूब के पास एक संदेश भेजा है, और वो इस्राएल पर प्रकट हुआ है, और सारी प्रजा को एप्रेमियों उत्तरी राज्य और शमरोन वासियों उत्तरी राज्य की राजधानी को मालूम हो जाएगा जो गर्व और कठोरता से बोलते हैं, ईंटें तो गिर गई है परंतु हम गड़े हुए पत्थरों से घर बनाएंगे। दूसरे शब्दों में वे आक्रमण करके हमारी ईंटों की दीवार को गिराएंगे, परंतु अब हम दीवार को पत्थर से बनाएंगे। यशया अध्याय 9 पद 10 से लेकर 12 तक। गुल्लर के वृक्ष तो कट गए हैं परंतु हम उनकी संति देवदारों से काम लेंगे, इस कारण यहोवा उन पर रसीन के बैरियों को प्रबल करेगा और उनके शत्रुओं को अर्थात पहले आराम को और तब पिलिस्तियों को उभारेगा और वे मुंह खोलकर इसराइलियों को निगल लेंगे। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बड़ा हुआ है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर शमरोन, आराम या सीरिया और पिलिस्तीन की संयुक्त सेना उनके विरुद्ध खड़ी करेगा। फिर भी इसराइल का मन परमेश्वर के प्रति कठोर है। परमेश्वर के इस न्याय के बावजूद ना ही उनके मन में बदलाव होगा, ना ही उनमें आत्मिक जागृति आएगी, इसलिए परमेश्वर उनका न्याय करने जा रहा है। यशया अध्याय 9 पद 13। तो भी ये लोग अपने मारने वालों की ओर नहीं फिरे और ना सेनाओं के यहोवा की खोज करते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में या एक पापी मनुष्य को दंड या ताड़ना देता है केवल इस उद्देश्य से कि वो मन फिराकर परमेश्वर के निकट आ जाए। यदि हमने मन न फिराया तो दंड की कठोरता बढ़ती जाती है और परिणाम ये होता है कि हम नाश किए जाते हैं। इस्राएली प्रजा ने ध्यान नहीं दिया, अपने मन को फिराकर वे परमेश्वर की शरण में नहीं आए, उन्होंने परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं दिया। यशया अध्याय 9 पद 14 और 15। इस कारण यहोवा इस्राएल में से सिर और पूंछ को, खजूर की डालियों और सरकंडों को एक ही दिन में काट डालेगा। पुर्निया और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर है और झूठी बातें सिखाने वाला नभी पूंछ है, परमेश्वर उन्हें मिठा डालेगा। यशया अध्याय 9 पद 16। क्योंकि जो इन लोगों की अगुवाई करते हैं वे इनको भटका देते हैं और जिनकी अगुवाई होती है वे नाश हो जाते हैं। ये बड़ी ही दयनीय स्थिति होती है जब धर्म गुरु और अगुवे मनुष्य को पथ भ्रष्ट करते हैं। यीशु ने कहा लूका अध्याय 6 पद 39, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? ये बुद्धि की बात है। ये सत्य है कि यदि मनुष्य झूठे भविष्यत वक्ताओं के पीछे चलेंगे तो उनका विनाश निश्चित है। मुझे एक धार्मिक अगुवे जिम जोन्स और उस अनावश्यक त्रासदी का ध्यान आता है जो गुयाना में घटी थी। वो अपने वचनों को परमेश्वर के वचन से अधिक मूल्यवान कहता था, वो देवता समझा जाता था, लोग उसके वचनों को अधिकार संपन्न मानते थे। आज संसार में अनेक पाखंडी है जिनके पीछे मनुष्य अंधे होकर चलते हैं। ये लोग अपने काम को बढ़ाने के लिए सांसारिक विधियों का प्रयोग करते हैं, पत्र लिख लिख कर पैसों की भीख मांगते हैं। यदि किसी के पास आंख हो तो वो उन्हें पढ़कर जान पाएगा कि उनका संदेश कितना असंगत होता है। कुछ साल पहले एक प्रचारक था जो रेडियो पर प्रचार करता था और वो प्रचार के साथ अपने चमत्कारी बटुओं का विज्ञापन भी देता था कि जो कोई इस चमत्कारी बटुए को अपने जेब में रखेगा उसके पास पैसा कभी समाप्त नहीं होगा। उस बटुए का मूल्य 10 रुपए था, परंतु अंत में वो दशमांश की भीख मांगता था कि यदि उसे ऐसा आर्थिक सहयोग नहीं दिया तो वो रेडियो कार्यक्रम प्रसारित नहीं कर पाएगा। वो ये भी कहता था कि जो उसे दिल खोलकर दान देगा उसे वो चमत्कारी बटुआ इनाम में देगा। बड़ी विचित्र बात है, वो अपने चमत्कारी बटुए की सहायता से रेडियो प्रसारण की व्यय को वहन क्यों नहीं करता है। अनेक लोग हैं जो पत्र लिख लिखकर पैसा भी भीख मांगते हैं कि उनकी महान ईश्वरीय सेवा आर्थिक संकट में है। वे सहायता करने वालों को स्वास्थ्य, धन और बुद्धि प्राप्त करने की पुस्तकें उपहार में देने का वचन देते हैं, क्योंकि ये पुस्तकें विश्वास को उन्नत बना देती है। वे अपनी विश्वास को आर्थिक क्षेत्र में उन्नत क्यों नहीं बनाते? वे कहते हैं उनका विश्वास आप में है, इसलिए वे आपसे विनती करते हैं। दूसरे शब्दों में उनका विश्वास परमेश्वर में नहीं है। यही कारण है कि उन पर आर्थिक संकट आता है। यदि उनका विश्वास परमेश्वर पर हो तो आर्थिक संकट क्यों आए? ऐसे अगुए मनुष्य को ठोकर खिलाते हैं और उनके अनुयायी नाश हो जाते हैं। कैसी त्रासदी इस संसार में, कैसे धार्मिक आडंबर व्याप्त है। हाल ही में हमें किसी ने एक चेक भेजा और पत्र में लिखा कि उन्हें हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा, इसलिए ये सहयोग भेज रहे हैं, परंतु उनका नाम सूची में ना जोड़ा जाए। मैंने उसे पत्र लिखकर आभार व्यक्त किया और उसे ये जानकारी दी कि हमारे पास ऐसी कोई सूची नहीं है और मैंने बाइबल में कभी नहीं पढ़ा कि यीशु या पौलुस के पास आर्थिक सहयोगियों की सूची थी। वे परमेश्वर में विश्वास रखते थे। मैं एक बार विशाल सभा में प्रचार कर रहा था। मैंने उनसे स्पष्ट कह दिया कि मैं व्यर्थ बैठा रहने के कारण उनके मध्य प्रचार करने नहीं आया था, ना ही उनसे आर्थिक सहयोग की भीख मांगने आया था। सत्य तो यह है कि उनके टीवी कार्यक्रम में हमें उनके दान से कहीं अधिक व्यय उठाना पड़ता है। मेरा स्वर्गीय पिता बहुत धनवान है और वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। यदि हम विशाल सभाओं में खड़े होकर ये कहने की अपेक्षा कि हमें इस प्रचार कार्यक्रम करने के लिए इतने 1000 रुपयों की आवश्यकता है, परंतु हमें ये कहना चाहिए हम यहां उपस्थित हैं कि आपको बता दें कि यीशु शीघ्र ही आने वाला है और हम आपको चेतावनी देने यहां उपस्थित हैं, तो ये कैसी महिमा की बात होगी। यदि कोई एक सभा में एक बार चंदा लेकर फिर दूसरी बार किसी आवश्यकता के लिए विशेष चंदा ले और प्रवेश द्वार पर दान पात्र रख दे, तो मुझे तो ये बड़ा ही घृणित काम लगता है। यशया अध्याय 9:17। इस कारण प्रभु ना तो इनके जवानों से प्रसन्न होगा और ना इनके अनाथ बालकों और विधवाओं पर दया करेगा, क्योंकि हरेक भक्तिहीन और कुकर्मी है और हरेक के मुख से मूर्खता की बातें निकलती है। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। वे उजाड़ जाने के उपरांत भी मन फिराव नहीं कर रहे थे। यशया अध्याय 9:18-21 तक। क्योंकि दुष्टता आग की नाई धधकती है, वो उठ कटारों और कांटों को भस्म करती है, वरन वो घने वन की झाड़ियों में आग लगाती है और वह धुएं में चकरा चकरा कर ऊपर की ओर उठती है। सेनाओं के यहोवा के रोष के मारे ये देश जलाया गया है और ये लोग आग की ईंधन के समान हैं। वे आपस में एक दूसरे से दया का व्यवहार नहीं करते। वे दहनी ओर से भोजन वस्तु छीन कर भी भूखे रहते और बाईं ओर से खाकर भी तृप्त नहीं होते। उनमें से प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी बाहों का मांस खाता है। मनुष्य एप्रेम को और एप्रेम मनुष्य को खाता है और वे दोनों मिलकर यहूदा के विरुद्ध है। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। न्याय के लिए परमेश्वर ने अपना हाथ उठाया हुआ है, फिर भी लोग हठीले बने हुए हैं।